नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभार। राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में नई सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीबीआई ने नौकरियों के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों अन्य के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। और खेलों में भारत आज लंदन में एफआईएच हॉकी प्रो लीग में जर्मनी के साथ खेलेगा। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात की और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया था कि श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से समर्थन पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक सुदृढ़, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उन्होंने राष्ट्रपति को सूचित किया है कि वे रविवार शाम को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के प्रति सहज हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन अभी बाकी विवरणों पर काम करेगा और तब तक मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी।
हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
श्री मोदी ने कहा कि लोगों ने एनडीए सरकार को एक और अवसर दिया है और उनकी सरकार देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मनोनीत प्रधानमंत्री ने कहा कि स्थिर सरकार भारत और इसकी अर्थव्यवस्था के साथ साथ युवाओं के लिए लाभदायक साबित होगी। उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार देश का तेज गति से विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। राष्ट्रपति भवन में एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया। इससे पहले एनडीए संसदीय दल ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री मोदी को एनडीए नेता के रूप में चुनने का प्रस्ताव रखा और इसका सभी एनडीए सहयोगियों ने समर्थन किया। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि देश ने उल्लेखनीय प्रगति और परिवर्तन देखा है। श्री नायडू ने कहा कि भारत के पास सही समय पर एक सही नेता है और वे हैं नरेंद्र मोदी।
टुडे इंडिया इज हैविंग राइट लीडर राइट टाइम, दैट इज नरेंद्र मोदी। दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इफ यू मिस नाउ वी विल मिस फॉरएवर। That is where we are having wonderful opportunity.
श्री मोदी को समर्थन देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि वे श्री मोदी के नेतृत्व में मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश की सेवा की है और जो कुछ कार्य बचे हैं उन्हें वे अब पूरा करेंगे।
मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे, सब पार्टी के लोग। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि कई वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री को तीसरा कार्यकाल मिला है। राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के समापन समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि आखिरी बार 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को तीसरा कार्यकाल मिला था। वहीं तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सुबह 11:27 पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। समारोह विजयवाड़ा के पास होगा। इसमें एनडीए के वरिष्ठ नेता और पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना है। चंद्रबाबू नायडू वर्ष 2014 में तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश में संयुक्त राज्य के विभाजन के बाद नए बने राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए थे। वे चौथी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होंगे। एनडीए के सहयोगी दलों तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों में 175 विधानसभा सीटों में से 164 पर जीत हासिल की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर एक रोमांचक मुकाबला,
जब होंगी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने।
आईसीसी T20 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत पाकिस्तान मैच का आंखों देखा हाल
सुनिए सिर्फ आकाशवाणी नेटवर्क पर।
समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए समान चुनाव चिन्ह मांगने वाले राजनीतिक दलों से आवेदन स्वीकार करने का फैसला किया है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचक दल को जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम घोषित करने से पहले समान चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुद्रास्फीति विकास संतुलन अनुकूल रूप से आगे बढ़ रही है। गवर्नर ने डिजिटल भुगतान करते समय ग्राहकों की सुविधा को आसान बनाने के लिए विकासात्मक उपायों की भी घोषणा की। एक रिपोर्ट।
भारतीय रिजर्व बैंक ने आज यूपीआई लाइट वॉलेट के लिए ऑटो रिप्लेनिशमेंट सुविधा लाने का प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार अगर यूपीआई वॉलेट की शेष राशि ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम हो जाती है तो पैसे ग्राहक के खाते से उसके वॉलेट में सीधे चले जाएंगे बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण या प्री डेबिट नोटिफिकेशन के। आरबीआई ने कहा है कि इस कदम से ग्राहक यूपीआई लाइट का निर्बाध उपयोग कर पाएंगे। इसी तरह ई मैंडेट ढांचे के तहत फास्टैग और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जैसी वॉलेट सुविधाओं को शामिल करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। आरबीआई ने कहा है कि वह ई मैंडेट ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक डेबिट से कम 24 घंटे पहले वाली प्री डेबिट नोटिफिकेशन का प्रावधान हटा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाने की उम्मीद है। निशा राणी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि मुठभेड़ नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा पर हुई। गोबिल के जंगल में माओवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद जिला रिजर्व गार्ड और भारत तिब्बत सीमा पुलिस की संयुक्त टीम ने खोज अभियान शुरू किया। इस दौरान हुई मुठभेड़ में जिला रिजर्व पुलिस बल के 3 जवान भी घायल हो गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने मुठभेड़ पर और जानकारी दी।
ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इसमें दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर और जगदलपुर और कोंडागांव 4 जिले की डीआरजी की फोर्स एवं आईटीबीपी की फोर्स संयुक्त ऑपरेशन में इन्वॉल्व थी। इस ऑपरेशन में कई बार रुक रुक कर एक्सचेंज ऑफ फायर और मुठभेड़ हुआ, जिसमें 7 वर्दीधारी नक्सली का शव हथियार सहित बरामद किया गया है। मुठभेड़ में 3 जवान भी घायल हुए, जिनको तत्काल वहां पर प्राथमिक उपचार किया गया और रेस्क्यू कर उनको उसी इलाज हेतु रायपुर ले जाया गया है। बाकी अभी टीम वापसी में है तो और भी नक्सली के घायल होने की संभावना है।
18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 15 जून से 21 जून को होने जा रहा है। इस महोत्सव में 59 देशों की 314 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव का विषय है अमृतकाल में भारत। जापान, रूस, बेलारूस, ईरान, इटली, वियतनाम और माली की कुल 17 फिल्में भी महोत्सव में दिखाई जाएंगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो नौकरी के बदले जमीन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके परिवार के सदस्य और अन्य लोगों के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दायर करेगा, जिस पर विशेष अदालत 6 जुलाई को सुनवाई करेगी। इससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एक नई चार्जशीट के आधार पर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को जमानत दे दी थी। एक अन्य मामले में सीबीआई ने दिल्ली के शराब नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा 6 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेगी। उधर अदालत ने कविता की न्यायिक हिरासत को 21 जून तक बढ़ा दिया है। लंदन में चल रही FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-0 से हरा दिया था। कल भारत का मुकाबला मेजबान ब्रिटेन से होगा और उनका इरादा अपने अभियान को बेहतरीन प्रदर्शन के साथ समाप्त करना होगा। भारतीय पुरुष टीम को अंक तालिका में 4th स्थान मिला है। टीम ने 14 मैचों में से 24 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं फ्रेंच ओपन टेनिस में शुक्रवार को पुरुष एकल सेमीफाइनल में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने इटली के जानिक सिनर को हरा दिया। कार्लोस अल्कराज ने 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3 से जीत दर्ज करके पहली बार टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश किया। स्पेन के 21 वर्षीय अल्कराज ग्रैंडस्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। अल्कराज ने 2022 में हार्ड कोर्ट पर US ओपन, 2023 में ग्रास कोर्ट पर विम्बल्डन जीतने के बाद और अब फ्रेंच ओपन में लाल बजरी पर खिताब जीतने के लिए उतरेंगे। दूसरे सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव, 7वीं वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर रूट को 2-6, 6-2, 6-4, 6-2 से हराकर फाइनल में पहुंचे। अब फाइनल में अल्कराज का मुकाबला रविवार को अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। दूसरी ओर महिला एकल का फाइनल कल शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्वीटेक और इटली की जैस्मीन पाओलिनी के बीच होगा। भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने म्यूनिक में ISSF विश्व कप प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिए हैं। भारत ने इस प्रतियोगिता में 2 पदक पक्के किए। कल सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में तेज वर्षा और आंधी की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आंधी, बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। उधर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा में भी अगले 2-3 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं बिहार, गंगे, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी अगले 2 दिनों तक मौसम गर्म और आर्द्र रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद फरहत। राजग के नेता चुने गए नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, मोदी ने कहा विपक्ष ने लोकतंत्र में लोगों का विश्वास खत्म करने का प्रयास किया। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ताजपोशी की तैयारी पूरी, मोदी को महामहिम मुर्मू ने सरकार बनाने का न्यौता दिया, शपथ ग्रहण रविवार को। अमर उजाला लिखता है, मोदी कल तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मोदी की हैट्रिक के साक्षी बनेंगे कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष। तापमान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश के आसार, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, धूल भरी आंधी भी चलेगी, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर की खबर है, मई में लू अब तक के सबसे गर्म हीटवेव से 1.5 डिग्री ज्यादा। वहीं हिन्दुस्तान ने उफ गर्मी शीर्षक से लिखा है, 2 दिन की राहत के बाद लू फिर से सताएगी, महामुकाबले का विराट खिलाड़ी, कमजोर पाकिस्तान के लिए कोहली से निपटना आसान नहीं, कल भारत और पाकिस्तान के बीच होगी सबसे बड़ी भिड़ंत, दैनिक जागरण की सुर्खी है। वहीं नवभारत टाइम्स ने ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार पर सुर्खी दी है, पाकिस्तान के दिग्गजों ने टीम की कमजोरियां गिनाई, अमरीका से मिली हार को बताया काला दिन। ऑनलाइन गेम बिगाड़ रहे बच्चों का मूड, शिक्षक दिलाएंगे मोबाइल स्क्रीन से छुटकारा, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और निजी स्कूलों के लिए जारी की गाइडलाइन, गर्मी की छुट्टियों में स्कूल जाकर पेड़ पौधे संभाल रहे शिक्षक, नागौर जिले के सरकारी स्कूल में विकसित किया उद्यान, राजस्थान पत्रिका ने यह खबर सचित्र प्रकाशित की है।
धन्यवाद देवेंद्र। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में नई सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया, शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू 12 जून को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सीबीआई ने नौकरियों के बदले जमीन घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्य और अन्य के खिलाफ अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 माओवादी मारे गए। और खेलों में भारत आज लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में जर्मनी के साथ खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।